मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 19 नवंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और इन दोस्तों के नाम हैं मृत्युंजय पांडे, आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आनंद कुमार, आपका गांव है फुलवरिया, जिला मोतिहारी बिहार से हैं। कुलदीप कुमार तिवारी, आपका गांव है छिवलाहा, जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं। योगिता, आप दिल्ली से हैं। स्नेहा यादव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। मोहम्मद जैनुल आबेदीन, आपका गांव है दुधुआ, जिला औरंगाबाद बिहार से हैं। और मोहम्मद शादाब, उरई, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं। तो मृत्युंजय, आनंद, कुलदीप, योगिता, स्नेहा, मोहम्मद जैनुल और मोहम्मद शादाब, आप सभी साथों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे सीबीआई के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए उससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। सच यह है कि इस बीच में आपने न्यूज सुनी होगी, कोई खास खबरें नहीं है। 5 राज्यों में आपको मालूम है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ज्यादातर खबरें जो है आप यू कह लीजिए कि 5 राज्यों के इन चुनावी माहौल से ही संबंधित होती हैं। वो आपको डीडी चैनल्स पर भी, न्यूज पर भी देखने को मिलता होगा और दूसरे चैनल्स भी अभी इसी में थोड़े से ज्यादा खोए हुए हैं, और जो स्वाभाविक भी है क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव को, जो अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसकी एक पृष्ठभूमि माना जा रहा है, भूमिका माना जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि यह माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव कहीं न कहीं 2019 के चुनाव परिणामों को जबरदस्त रूप से प्रभावित करेंगे। खैर, वो एक अलग बात है। फ्रेंड्स, अगर आपने न्यूज सुनी हो तो उसमें एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट खबर है, और वो ये कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय जो महाराष्ट्र का है, जो पिछले कुछ समय से इसकी मांग भी कर रहे थे और आंदोलन की स्थिति भी बनी थी, उनको पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया है। और पिछड़ा वर्ग घोषित करने के साथ ही साथ यह कहा भी है कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जो आरक्षण दिया जाएगा वो अभी जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसी के तहत नहीं होगा, बल्कि इनके लिए स्वतंत्र कोटे की व्यवस्था की जाएगी। अब यहां देखिए संवैधानिक प्रश्न आएगा। संवैधानिक प्रश्न यह कि ऑलरेडी जो अभी कोटा है 49-50% के बीच में, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है जिन्होंने दिया है, लेकिन केंद्र में आप जानते हैं 49% के आसपास हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 50%, यानी कि 50% से अधिक नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि जो आरक्षण की बात कही गई है आगे चल करके वो क्या रूप लेता है। यहां बस आपको थोड़ा सा यह समझना होगा फ्रेंड्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पॉलिटी है वो कैसे डिफर करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन विधानसभा पारित कर रही है, वो भी एक लेजिस्लेटिव है, राज्य की शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है, विधायिका है, वो पारित कर रही है कि हम स्वतंत्र कोटे के तहत आरक्षण देंगे, राइट। तो वो ऐसा कर क्यों रही है, इसका उत्तर आपको पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगा, पॉलिटी में मिलेगा, या यूं कह लीजिए पॉलिटिक्स में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर हम इसे डेमोक्रेटिक तरीके से सोचे तो जो मराठा समुदाय है वो महसूस कर रहा है कि हम बहुत पिछड़ गए हैं, हमें भी आरक्षण चाहिए, तभी हमारे समुदाय का विकास हो सकता है। और लोकतंत्र में यह सोचने की आजादी उन्हें है, तो उन्होंने अपना एक समूह बना लिया है जिसे हम एक भाषा में, या कह लीजिए राजनीति की भाषा में, प्रेशर ग्रुप कहते हैं, दबाव समूह। उस दबाव समूह में इतनी ताकत है कि वो राज्य सरकार से अपनी बात मनवा सकता है, राज्य सरकार पर दबाव डाल सकता है, इसीलिए वो दबाव समूह है। राज्य सरकार डेफिनेटली यह सोचेगी कि अगर इस यह दबाव समूह हमारे विरोध में हो गया तो स्वाभाविक तौर पर इसके मत हमें नहीं मिलेंगे, और यदि इसके मत हमें नहीं मिले तो हमारी पार्टी जो अभी सत्ता में है अगली बार के चुनाव में हो सकता है कि सत्ता से बाहर हो जाए। तो वह उस दबाव समूह की मांग को कहीं न कहीं मानने पर विचार करेगी ही करेगी, वह उसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकती, और यह सब बावजूद इसके भी वो करेगी कि उसे लग रहा होगा कि उनकी बात को मान पाना संवैधानिक दृष्टि से सरल नहीं है, आसान नहीं है। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक संवैधानिक स्थिति और एक जो पॉलिटी है वो बिल्कुल अलग अलग छोर पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में दिखाई दे रहे हैं, और यही लोकतंत्र की प्रक्रिया भी है, याद रखिए। क्योंकि अगर हम दबाव समूह से उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे तो फिर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम क्या करें। तो जो डेमोक्रेसी है, बेसिकली क्लास के स्टूडेंट को मालूम होगा कि मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि एक ऐसी कला है, एक ऐसी अद्भुत कला है यह, जो परस्पर विरोधी जो समूह हैं उनके बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करती है, सामंजस्य बिठाती है, और यही है आर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो आपको यहां दिखाई दे रही होगी, राइट फ्रेंड्स। अब मैं एक बात और इससे पहले कि मुख्य विषय की शुरुआत करूं बताना चाहूंगा, और ये खासकर अपने क्लास स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा। फ्रेंड्स, इस बार फ्राइडे को मैंने एक क्लिपिंग्स आप लोगों को दी थी, अगर आप लोगों ने क्लिपिंग्स पर ध्यान दिया होगा तो वो था देश में जलमार्गों के साथ ट्रांसपोर्ट ग्रिड का विकास आवश्यक, एक छोटी सी क्लिपिंग है, जलमार्गों के ऊपर भारत में जल परिवहन के बारे में है, और ये बहुत ही छोटी सी क्लिपिंग है, 17 तारीख के दैनिक भास्कर में ये छपी थी, बहुत ही छोटी सी क्लिपिंग है। मैं चाहूंगा कि आप सब इस क्लिपिंग्स को आधार बनाकर एक छोटा सा नोट तैयार करें, बहुत छोटा सा नोट, डिटेल में नहीं, एकदम छोटा सा नोट, इस रूप में कि इसकी सारी बातें आपके उस नोट्स में आ जाएं, साथ ही साथ फालतू की चीजों से आप बचें, और वो जितनी बातें आए वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, यानी कि जो बातें आनी चाहिए वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनको मैंने कहा कि फालतू चीजों से बचें वे भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो इस दृष्टि से आपको नोट्स बनाने हैं या पॉइंट्स नोट करने हैं कि मान लीजिए कि एग्जाम आप देने जा रहे हैं, है ना, एग्जाम देने से एक घंटा पहले आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर लेने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान करके चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि नोट्स आपको इस रूप के बनाने हैं कि आप एक मिनट में इस पूरे टॉपिक को दोहरा लें, बस इस ये मैंने आपको फ्रेम दिया है, इस फ्रेम पर आप इसका नोट्स तैयार कीजिए, एक छोटा नोट्स, बहुत ही शॉर्ट नोट्स, याद रखिए। अब कैसे बनाएंगे ये पूरी तरह से मैं आपके अपने ऊपर छोड़ता हूं, जिसे आप कह सकते हैं कि ये आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स है, नोट्स बनाने की कला है, तो कला तो देखिए सिखाई नहीं जा सकती, बताई जा सकती है, तो मैंने बता दिया, अब कला आप इस्तेमाल कीजिए अपने अपने ढंग से। हो सकता है कि आगे चल करके मैं इस पर कुछ बातें करूं या हम लोग और कुछ इस पर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे, तो प्लीज ये एक तरह से आप कह लीजिए कि होमवर्क है, एक्सरसाइज है, जिसे आप अगर समय निकाल सके तो प्लीज करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसे हम हिंदी में कहते हैं। ये विषय क्यों अभी इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और यह प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई दो तीन कारणों से बहुत ज्यादा अभी चर्चा में आ गई है। एक कारण तो आपको मालूम ही है, सीधा सीधा जो है कि उसके जो दो शीर्षस्थ जो अधिकारी थे उनको सरकार ने किस तरीके से अचानक हटाया, और उन दोनों के मामले अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मतलब यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो दूसरों के अपराध हों, चाहे वो भ्रष्टाचार के अपराध हों या दूसरे किस्म के अपराध हों, उनकी जांच करता है, वो संस्था के अधिकारियों द्वारा ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके अधिकारी किस तरीके से उसी तरह के भ्रष्टाचार में फंसे हैं, लेकिन आपके दिमाग में यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये केवल अभी आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। यह आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन देखिए, एक घटना फिर वहीं खत्म नहीं होती है, दूसरी घटनाओं को जन्म देती है। दूसरी घटना अभी अभी जो घटित हुई है वो ये कि चंद्रबाबू नायडू जी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला कि जो सीबीआई है वो हमारे स्टेट में बिना राज्य सरकार की परमिशन के जांच नहीं कर सकती। ये उन्होंने कहा। उनके कहने के बाद फिर जो ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात दोहराई कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के हम अपने यहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कोई भी जांच नहीं करने देंगे। ये दूसरी बड़ी घटना है। तो ये दो इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि जो सीबीआई का टॉपिक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जो पहली घटना है जो मैंने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप की बात बताई है, उसको अब आपको यह देखना होगा कि सीबीआई के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस पर निगरानी का दायित्व है, जिस पर यह दायित्व है कि देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक अपराध हो या शारीरिक अपराध हो, उनकी वह जांच करे और जांच कर इस तरीके से करे कि अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सके, तो वो क्यों इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में खुद फंसी हुई है? तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, उसका इतिहास क्या रहा है, वो क्यों इस तरीके से काम कर रही है? और उससे भी बड़ी बात है, आपको ध्यान होगा कि लगभग मुझे लगता शायद एक दो साल पहले बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले की सुनवाई करते हुए इसे पिंजड़े में कैद तोता कहा था। यह शब्द बहुत बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, पिंजड़े में कैद तोता। पिंजड़े में कैद तोते का मतलब है कि वह तोता, उसकी अपनी कोई भाषा नहीं है, तोता को आप जो सिखा देंगे वही बोलेगा। तो ये पिंजड़ा कौन सा है? ये पिंजड़ा है सरकार, यानी कि जो पार्टी सत्ता में है, जो सरकार है, और तोता उसमें बंद सीबीआई है। यानी कि सीबीआई वही करेगी, जो तोता है वो वही करेगा जो सरकार चाहेगी, जो सरकार करने के लिए कहेगी तोता वही बोलेगा, खत्म हो गया। यानी कि सीबीआई पर सरकार का इतना कड़ा नियंत्रण है कि सरकार की इच्छा के अनुरूप ही सीबीआई काम करती है। तो देखिए, फिर हम जब राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो फिर ये लगेगा कि इसका मतलब है कि सरकार सीबीआई जैसी एजेंसी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर सकती है। मान लीजिए कि अपोजिशन को परेशान करना है, अपोजिशन पर रेड डलवानी है, जांच करानी है, तो सीबीआई को कह सकता है कि आप कीजिए, और अगर अपनी पार्टी के लोग हैं या दूसरे भी हैं जिनकी वो मदद करना चाहता है, जिनको जानते हुए भी किसने अपराध किया है लेकिन बचाना चाहता है, तो सीबीआई से कह दे कि नहीं, इनकी जांच में ढील ढाल बरतिए और ढीला ढाला करके छोड़ दीजिए ताकि इनको कोई दिक्कत न हो। तो अगर यह है तो सीधी सी बात है कि फिर सीबीआई पूरी तरह से एक पिंजड़े में कैद तोता ही है, और अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है लगभग उसके आधार पर लोग यही आरोप लगाते हैं कि यह पिंजड़े में कैद तोता है, राइट? तो यह पहला प्रश्न बनता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी भर्ती कैसे होती है, इस मतलब यानी कि जो सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और क्या क्या नियम कानून इनके लिए बनाए गए हैं। अब देखिए कि हमारे पास दूसरी एजेंसीज ऐसी हैं, एग्जैक्ट ऐसी नहीं लेकिन चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति सरकार ही कर रही है, लेकिन एक कमेटी होती है, सीएजी है वहां भी एक बकायदे कमेटी होती है, लेकिन इनके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त होने के बावजूद, यानी कि कमेटी के द्वारा नियुक्त होने के बावजूद, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन सीबीआई के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले तो इसकी जो नियुक्ति है वो अलग तरीके से होती थी, बाद में सन 2013 में इसकी नियुक्ति का जो आधार था वो बदला गया और एक कमेटी के द्वारा ही इसकी नियुक्ति होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, इसके बाद जो दूसरे होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, विपक्ष पार्टी के नेता होते हैं, और तीसरे जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस, या अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो फिर चीफ जस्टिस अपनी तरफ से किसी भी दूसरे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा उसे भेज सकते हैं। ये कैंडिडेट लेते हैं और साथ ही साथ जो पहले के डायरेक्टर हैं उनकी भी ओपिनियन देखी जाती है कि किसको नियुक्त किया जाना चाहिए। तो यहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो डायरेक्टर की नियुक्ति हो पूरी तरह से सरकार की ही मर्जी से न हो, तो यहां थोड़ी सी व्यवस्था तो की गई है, लेकिन और जो दूसरी चीजें हैं वो उतनी बेहतर शायद नहीं है। तो यहां पर आपको समीक्षा करनी होगी कि क्या किया जा सकता है ताकि सीबीआई की निष्पक्षता बनी रहे। जो दूसरा पॉइंट है मित्र चंद्रबाबू नायडू जी वाला जो मैंने आपसे बात की, उसमें देखना आपको यह होगा कि अगर राज्य ये कहने लगेंगे कि हम सीबीआई की अनुमति के बिना अपने हमारी अनुमति के बिना अपने राज्य में नहीं आने देंगे तो फिर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि केंद्र और राज्य दोनों की स्वायत्तता, तो यहां राज्यों की तो स्वायत्तता मिल गई लेकिन यहां केंद्र कमजोर हो रहा है। और दूसरी बात यहां यह भी है कि राज्यों की फिर जांच पड़ताल होगी कैसे, राज्य में भी ऐसा तो नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं और वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। तो जब पूरा नियंत्रण राज्यों के हाथ में होगा तो फिर केंद्र का तो कोई नियंत्रण रह ही नहीं जाएगा, फिर तो राज्य अपने आप में मनमानी करने लगेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहां जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है अब ज्यादातर यही देखने में आ रहा है कि केंद्र में किसी पार्टी की सरकार है और राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार है। तो जब दूसरी पार्टियों की सरकार होगी तो स्वाभाविक है कि वो यही ब्लेम करेगी कि नहीं नहीं हमको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, हमारे यहां सीबीआई नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लग रहा है कि बड़ा विचित्र सा संकट उठ खड़ा होगा। तो इस पर भी आप सबको विचार करना है। और इस सेकेंड पॉइंट को लेकर के बकायदे टाइम्स ऑफ इंडिया का आज एक एडिटोरियल कमेंट भी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और सीबीआई के मामले को लेकर के जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया है उसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा लेख है और वो लेख है शेखर गुप्ता जी का जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनमें से आप बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मित्रों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सचिन कुमार सिंह दुर्ग छत्तीसगढ़ से उनका मेल मिला है। सचिन तुम्हारा मेल मिला सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं सचिन कुमार सिंह। तो मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति बहुत संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति प्रदान करें और तुम सबको यह दुख सहने की शक्ति दें। तेजिंदर सिंह का मेल है जो पंजाब से हैं और अभी हमारे 9th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से तेजिंदर सिंह तुम्हारा स्मरण है, मुझे ध्यान आ रहा है कि तुमको शायद मैं अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए भी बुलाया था और तुमसे कई बार मेरी बातें भी हुई हैं। बहुत प्यारा मेल तुमने लिखा है, मैं इसके लिए अकेडमी के अपने सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद देता हूं। और यह पढ़कर बहुत राहत मिली या कह लीजिए आत्मसंतोष का अनुभव हुआ कि तुम्हारी जो कैपेसिटी है चीजों को समझने की यहां से जाने के बाद इतनी अच्छी हो गई है। दूसरे अन्य मित्रों का नाम है जिन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, वो हैं चंद्रमौली, कविता वर्मा अमेठी उत्तर प्रदेश से, शुभांकर मंडल, आलोक सिंह मुंबई से और सत्यप्रकाश, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर से आप सबकी इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।